आज की ये सुबह के श्रीमद् भागवतम की कक्षा में आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद से अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 2 और इस अध्याय का शीर्षक है श्री भगवान ऋषभ देव के लक्षण। तो ये बहुत ही सुंदर अध्याय है। यहाँ पर महाराज नाभि के पुत्र के रूप में भगवान ऋषभ देव अवतरित हुए हैं और इसके पहले श्लोक में वर्णन आता है, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जन्म से ही महाराज नाभि के पुत्र में श्री भगवान के लक्षण प्रकट थे, यथा चरण तल के चिन्ह, ध्वज, वज्र आदि। यह पुत्र सबों के साथ समभाव रखने वाले और परम शांत थे। यह अपनी इंद्रियों तथा मन को वश में कर सकते थे और परम ऐश्वर्यवान होने के कारण भौतिक सुख के कामी नहीं थे। इन समस्त गुणों से संपन्न होने के कारण महाराज नाभि के पुत्र अनुदीन शक्तिशाली बनते गए। फलतः समस्त नागरिकों, सुधी ब्राह्मणों, देवताओं तथा मंत्रियों में चाहा कि ऋषभदेव पृथ्वी के शासक बने। तो हम देख रहे हैं कि पिछले अध्याय में किस तरह महाराज नाभि ने एक सुंदर यज्ञ किया था, एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मणों द्वारा, और विद्वान ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ करने के बाद वहाँ पर ब्राह्मण जो कि वैष्णव थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे, तो उनके अनुग्रह से उनके यज्ञ में, और महाराज नाभि भी बहुत ही शक्तिशाली भक्त थे, तो उनके लिए वहाँ पर स्वयं साक्षात भगवान विष्णु वहाँ पर प्रकट हुए। भगवान विष्णु के प्रकट होने के कारण वो विद्वान पुरोहितों को तो अच्छा नहीं लगा, उनको लगा कि अरे एक छोटा सा कार्य, क्योंकि महाराज नाभि को एक पुत्र की प्राप्ति के लिए यहाँ पर हमने भगवान को आमंत्रित किया है, बहुत क्षुल्लक कारण है, इस क्षुल्लक कारण के लिए भगवान को तकलीफ देना ठीक नहीं था। फिर भी जैसे भी हो वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए कि ऐसे शुल्ल कारण के लिए हमने आपको नहीं बुलाना चाहिए था। और प्रभुपाद जी भी लिखते हैं कि महाराज नाभि स्वयं भगवान को ही अपने पुत्र के रूप में नहीं चाह रहे थे, वे चाह रहे थे कि उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो भगवान के समान हो। तो प्रभुपाद जी बोलते कि इसके कारण वो उनकी भौतिक इच्छा थी कि ऐसा पुत्र, ऐसा शक्तिशाली पुत्र वो चाह रहे थे कि वो भगवान के समान हो। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उन्होंने चाहना था कि भगवान, स्वयं भगवान ही उनके पुत्र के रूप में आए ताकि उनको भगवान की सेवा करने का मौका प्राप्त हो, ये नहीं कि भगवान जैसा शक्तिशाली पुत्र प्राप्त हो। तो ये भी थोड़ी एक भौतिक इच्छा के रूप में ही वो प्रभुपाद जी लिख रहे थे। जैसे भी हो श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जैसे भी हो किसी व्यक्ति में अकाम मतलब किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा न हो, केवल शुद्ध इच्छा हो। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जो वृंदावन की गोपियां हैं उनके मन में केवल भगवान की सेवा करने का ही भाव है, वे भगवान को ही आनंद प्रदान करना चाहते हैं, इसीलिए वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो मन में केवल ये भाव रखना कि मुझे केवल गुरु वैष्णव भगवान की सेवा ही करना है, उनको संतुष्ट रखना है, तो ये अकाम भाव कहा जाता है, क्योंकि जीव है वो कामना रहित नहीं हो सकता, है ना। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर कोई जीव या कोई व्यक्ति इच्छा रहित है तो मतलब वो पत्थर जैसा है, पत्थर की कोई कामना नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती है, जीवात्मा है उसकी इच्छा होती है। जीवात्मा का अर्थ ही है चैतन्य युक्त, और जिसके पास विचार करने की शक्ति, भावना, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, तो ये जीव के पास होता है। तो कोई भी जीव इच्छा से मुक्त नहीं होता, कामना से मुक्त नहीं होता, लेकिन भगवान की संतुष्टि के लिए कामना रखना तो वो अकाम कहा जाता है। प्रभु जी लिखते हैं तात्पर्य में उस श्लोक के कि शुरुआत में अर्जुन भी युद्ध नहीं करना चाहता, तो ये भी उसकी खुद की कामना है, वो अपना आनंद का सोच रहा था कि इस युद्ध में मेरे सारे रिश्तेदार मर जाएंगे, फिर मुझे दुख होगा, इसलिए मैं युद्ध क्यों करूं। तो वो भी अपनी खुद की कामना रख रहा था। लेकिन जब भगवान ने पूरी गीता उसको समझाई और समझाया कि युद्ध उसको भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, और फिर अर्जुन फिर वो होश में आ गए और उन्होंने फिर युद्ध किया और फिर वो अकाम भक्त बन गए, ऐसे प्रभाजी लिखते हैं। तो कोई सर्व कामो वा, मतलब अगर किसी के पास पूरी भौतिक इच्छाएं हैं तो अगर अपनी भौतिक इच्छा पूरी करने के लिए कोई जीव देवताओं के पास जाता तो उसको इतना बुद्धिमान नहीं कहा जाता। लेकिन भौतिक इच्छा पूरी करने के लिए भी कोई जीव भगवान के पास आता है तो भी उसको फिर उदारा ना, उसको अच्छा कहा गया है, क्योंकि भौतिक इच्छा पूरी करने के लिए फिर भगवान के पास आया है। उसको इतना समझ में आया कि मेरा और भगवान का, उसका और भगवान का क्या संबंध है, और वो चाहता है कि भगवान मेरे पिता के समान है। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा माई की जय, श्री गौर निताय की, श्री प्रभुपाद। तो वो भगवान को पिता समझकर उसके पास, उनके पास जाकर उनसे अपनी भौतिक इच्छा पूरी करना चाहता है, तो भगवान भी उसे उदार कहते हैं कि एक महान व्यक्ति है क्योंकि मेरे पास आया है। तो सर्व कामो वा, मतलब किसी व्यक्ति के पास सब प्रकार की भौतिक इच्छा पूरी करने की इच्छा है तो भी उसे भगवान की आराधना करनी चाहिए। मोक्ष काम, कोई व्यक्ति अगर भौतिक इच्छा से त्रस्त हो गया है और भौतिक जगत से, और फिर वो भगवान की जो अंग कांति है ब्रह्म ज्योति उसमें अपने आप को विलीन करना चाहता है, अपने अपने अस्तित्व को समाप्त करना चाहता है, वो ये सोचता है कि ये भौतिक अस्तित्व है इसलिए ही मेरे को दुख है, तो मैं मेरा अस्तित्व ही समाप्त करना चाहता हूँ, तो इसलिए अगर वो ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहता है, मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, तो भी उसे भगवान की भक्ति, भगवान के पास आना चाहिए। तो इस तरह किसी भी माध्यम से व्यक्ति भगवान के पास आकर अपनी इच्छा पूर्ति करना चाहता है तो उसे उदारा कहा जाता है। जैसे भी वो महाराज नाभि को भी एक पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान की संतुष्टि के लिए यज्ञ किया, वे किसी देवता के पास नहीं गए भगवान को पुत्र प्राप्ति के लिए। तो इस तरह से है उनको उदारा कहा जाता है। फिर भी भगवान ने उनको कहा कि आप शुद्ध भक्त है, महाराज नाभि भी मेरे भक्त है, फिर भी मैं उनकी इच्छा पूरी करने का पूरा प्रयास पूरी करूँगा, हालांकि मेरे से समान कोई भी नहीं है। भगवान का एक नाम है कि अद्वितीय, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, परब्रह्म एक है, वो दो नहीं है। फिर भी भगवान अपनी शक्ति से, अपने विस्तार से महाराज नाभि और उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र के रूप में उन्होंने पुत्र बनना स्वीकार कर लिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान उनके पुत्र के रूप में जन्म ले रहे हैं और जन्म लिया। और यहाँ पर फिर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान में, जब भगवान उनके पुत्र के रूप में आए तो उनमें महाकवि द्वारा वर्णित समस्त उत्तम गुण दिखाई पड़े। उन्होंने केवल ये कहा नहीं कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊंगा, वास्तविक आ गए, विस्तार, भगवान स्वयं भगवान अपने विस्तार के रूप में महाराज नाभि के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं, और उनमें भगवान के सारे लक्षण प्रकट थे, और उनका शरीर बहुत ही दिव्य सुगठित था, उनमें सारे शौर्य बल सुंदरता नाम यश प्रभाव तथा इस प्रकार का उत्साह था। तो जब उनके पिता ने इन सब गुणों को देखा तो उन्होंने उनका नाम ऋषभ रख, ऋषभ का अर्थ है मनुष्यों में श्रेष्ठतम अथवा सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति। तो भगवान सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। से उनको कहा गया है नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको भवनाम यो विद्धाति काम। नित्यो नित्यानाम मतलब जीव भी नित्य है, अनंत कोटि जीव है वो भी नित्य है, और भगवान भी नित्य है। तो दोनों में फिर अंतर क्या है? अगर जीव भी नित्य है, भगवान भी नित्य है, इनमें अंतर क्या है कि इन अनंत कोटि जीवों की अनंत इच्छाएं पूरी करने वाले भगवान एक है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विद्धाति कामान। तो अनंत कोटि जीवों की सारी इच्छा पूरी करने वाले भगवान एक है। जीव भी चेतन है, भगवान भी चेतन है, लेकिन भगवान सब जीवों की इच्छा पूरी करने वाले हैं, इसलिए उनके भगवान कहा जाता है। तो जैसे भगवान व्यासदेव के पिताजी पराशर भगवान शब्द की व्याख्या करते हैं कि भग भग मतलब षड ऐश्वर्य और वान का मतलब है युक्त। तो जो व्यक्ति षड ऐश्वर्य से युक्त है उसे भगवान कहा जाता है। और जो भगवान के षड ऐश्वर्य है इसका वर्णन यहाँ पर आया है, जो समस्त संपत्ति के संपत्ति से युक्त है, ऐश्वर्यस्य वीर्यस्य जिनके पास शौर्य बल है, सुंदरता है, यश है, प्रभाव है, उत्साह है, वैराग्य है, तो इन षड ऐश्वर्य से पूरी तरह से जो युक्त है उसे ही भगवान कहा जाता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस प्रकार के जो गुण हैं कई बार व्यक्तियों में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वे गुण पूर्ण मात्रा में किसी में जीव में दिखते नहीं है। सुंदरता गुण है तो संसार में भी लोग सुंदर दिखते हैं, लेकिन उनकी सुंदरता क्षणभंगुर है, कुछ साल की रहती है और उसके बाद वो नाश हो जाती है। कई बार जो नायक होते हैं अपनी तरुणावस्था में बहुत सुंदर दिखते हैं, लेकिन फिर बुढ़ापे में उनका सौंदर्य नष्ट हो जाता है, तो वो फिर अपने प्रियकर अपने जो प्रिय लोगों को अपना चेहरा भी दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि बोलते कि अरे तरुण अवस्था में हम इतने सुंदर थे, अभी बुढ़ापे में हमारा सौंदर्य चला गया, तो फिर वो किसी के सामने नहीं आना चाहते। लेकिन भगवान का सौंदर्य ऐसा नहीं है, भगवान का सौंदर्य आध्यात्मिक है, वो कभी भी कम नहीं होने वाला है। भगवान का सौंदर्य दिन ब दिन बढ़ता रहता है ना। और भगवान इतने सुंदर है कि इस संसार की सबसे सुंदर स्त्रियां भी भगवान से आकर्षित हैं। कहते हैं कि भौतिक जगत की बहुत सबसे सुंदर स्त्रियों से भी ज़्यादा सुंदर स्वर्गलोक की स्त्रियां होती हैं, और स्वर्गलोक में सबसे सुंदर जो स्त्री है या स्त्रियां है उनसे भी कई गुना सुंदर वैकुंठ की लक्ष्मियां होती हैं, और वैकुंठ की लक्ष्मियों से कई गुना सुंदर गोलोक वृंदावन की गोपियां है, और गोपी में सर्वश्रेष्ठ सुंदरता में राधा रानी को कहा जाता है। और ऐसी राधा रानी भगवान कृष्ण के सौंदर्य पे हमेशा आकर्षित रहती है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान कितने सुंदर है। भगवान द्वारका में भी 16108 रानी के साथ विवाह किया, और ये सब रानियां सबसे सुंदर उत्तम स्त्रियां थी, और सबकी सब भगवान के ऊपर मोहित थी, हमेशा भगवान की सेवा करना चाहती थी किसी न किसी रूप से। रुक्मिणी देवी इतनी सुंदर महालक्ष्मी के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन फिर भी वो हाथ में चामर लेकर भगवान की सेवा करना चाती है। तो ये है भगवान की सुंदरता, और भगवान की सुंदरता हमेशा बढ़ता भगवान की सुंदरता बढ़ती रहती है। भगवान के भक्त जब भगवान की सुंदरता को देखते हैं तो उनको लगता है कि भगवान की सुंदरता बढ़ रही है ना, तो वो हमेशा उनको देखते रहती है। गोपियां तो बोलते कि ब्रह्मा जी ने हमारी इस आंखों में पलक क्यों बनाया, इस पलक को बनाने के कारण हम भगवान का सौंदर्य निरंतर रूप से देख नहीं सकते, उसे बाधा आ जाती है। तो वो विधाता ब्रह्मा जी में भी दोष ढूंढ रहे कि अरे पलक क्यों बनाया, हम पलक झपकते ही भगवान का सौंदर्य देख नहीं पाते। ये भगवान का सौंदर्य, और इसलिए सारा संसार भगवान के सौंदर्य पर आकर्षित रहता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने अपनी मंदिरों में विग्रह की स्थापना की है, राधा कृष्ण विग्रह, गौर निताय विग्रह, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी के विग्रह, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह, ऐसे अलग अलग प्रकार के विग्रह का स्थापना किया। और प्रभुपाद जी बोले कि हमारे विग्रह बहुत सुंदर होने चाहिए, और उनकी सेवा, उनका पोशाक, उनका श्रृंगार इतना सुंदर होना चाहिए कि लोग आकर्षित हो जाए। तो हम कई बार लोगों को पूछते हैं कि आपको मंदिर में आने के लिए क्या प्रेरित करता है, बोलते कि आपके मंदिर के विग्रह बहुत सुंदर है, क्योंकि विग्रह में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, है ना। भगवान की विशेष कृपा है कि जब भगवान के भक्त इस भौतिक जगत में भगवान की सेवा करते हैं तो साक्षात आध्यात्मिक रूप को देख नहीं पाते, तो फिर भगवान विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। ये भगवान का अर्चा अवतार है, भगवान के विविध अवतार है, तो अर्चा अवतार है। इससे भक्त जब भगवान को देखते हैं अर्चा विग्रह के रूप में, तो उनके मन को बहुत संतुष्टि प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान बहुत सुंदर है और भक्त भगवान की सुंदरता को देखते रहना चाहते। तो इस तरह ये भगवान का एक गुण है, परम सुंदर था। फिर भगवान का जो बल है वो भी बहुत दिव्य बल है, बहुत भगवान का बल जो है आध्यात्मिक बल है, भौतिक बल नहीं है। इसलिए भगवान अपने आध्यात्मिक बल से जब केवल एक हफ्ते के थे तो पूतना जब उनको मारने आई तो भगवान ने अपने आध्यात्मिक बल से पूरी तरह से उसके शरीर से विष पी लिया, उसका दूध पी लिया, फिर उसका प्राण भी निकाल लिया। अभी पूतना इतनी भयंकर थी, वो कम से कम उसका शरीर 24 किलोमीटर लंबा था, आप सोचिए 18 माइल वर्ण आता है, तो 24 किलोमीटर और लंबी थी, कितनी चौड़ी और कितनी ऊंचाई उसकी थी। एक साधारण बालक को तो उसने केवल अपने स्तन को विष लगा के मार दिया, हजारों बालकों को मार दिया था उसने, लेकिन भगवान को कुछ नहीं कर पाई। भगवान ने अपने आध्यात्मिक बल से उसको पूरी तरह मार दिया, और कितने सारे असुर वृंदावन में आए, भगवान ने अपने आध्यात्मिक बल से ही उसको मार दिया। अलग अलग रूप से वृंदावन में भगवान ने अपने हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं लिया, किसी भी तरह से हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं लेते हुए अपने आध्यात्मिक बल से ही भगवान ने कितने सारे असुरों को मार दिया। तो ये है भगवान। और जब 7 साल की उम्र भगवान की थी तो उन्होंने जब इंद्र का रोष हुआ ब्रजवासियों के ऊपर, तो अपने सब भक्तों को आश्रय प्रदान करने के लिए केवल अपने लेफ्ट हैंड बाएं हाथ के सबसे छोटी उंगली के नाखून के ऊपर उस गोवर्धन पर्वत को आसानी से उठा लिया। जैसे एक हाथी किसी गन्ने को आसानी से उठा लेता है, तोड़ लेता है, उठा लेता है, या किसी छोटे से पौधे को आसानी से उठा लेता है, उसी तरह भगवान कृष्ण ने अपने आध्यात्मिक बल से उस गोवर्धन को उठा दिया। और फिर किसी प्रकार से कुछ नहीं खाते हुए, ना पीते हुए, ना सोते हुए, 7 दिन और 7 रात तक बड़ी आनंद से भगवान ने उस गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा। यह है भगवान का बल। भगवान अपने बल से अद्भुत कार्य करते हैं। और फिर ज्ञान, तो किसी को ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए पहले ज्ञान को अर्जित करना होता है। कई सालों तक ज्ञान को अर्जित करने के बाद वो अपने ज्ञान को प्रदर्शित करता है, और उसमें कई बार कई सारी त्रुटियां होती है, लेकिन भगवान के पास अपने खुद ही ज्ञान है, सब ज्ञान के स्रोत भगवान है, सारे वेद पुराण भगवान से आए हैं। भगवान कहीं भी स्कूल में कॉलेज में कभी गए ही नहीं है ना, जाते हैं तो वो लीला कीर, जैसे चैतन्य महाप्रभु स्कूल में जा रहे थे, स्कूल में जा किस ले रहे, जस्ट अपना बचपन उनको बिताना है, बाकी सारे बच्चे जा रहे वो भी जा रहे। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि अध्यापक ने तो उनको पहले से जाना कि यार आप तो स्वयं भगवान है, मैं आपको क्या सिखाऊंगा, फिर भी अगर आपकी इच्छा है मैं आपके लिए अध्यापक का भूमिका निभाऊ तो मैं बन जाता हूँ। और पहले दिन से वो समझ गए कि ये तो दिव्य ज्ञान के स्रोत वाले व्यक्ति है। और जब चैतन्य महाप्रभु स्कूल में थे मायापुर में, तो अपनी ऊंची कक्षा के व्यक्ति के साथ भी वो वाद विवाद करते थे, उनको लगता था यार ये तो नीची कक्षा का लड़का है, हम ऊंची कक्षा के, फिर भी हमारे साथ बात करता है, हमको हरा देता है, बिल्कुल अद्भुत है। क्योंकि भगवान को कुछ ज्ञान अर्जन करने की जरूरत नहीं, उनके पास ही है। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता, तो उसने कई सारे प्रश्न भगवान के सामने रखे, और ये नहीं कि पहले से उन्होंने लिस्ट देके रखा था कि इस प्रकार के प्रश्न मैं आपको पूछूंगा। अर्जुन अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान से, और भगवान आसानी से उत्तर दे रहे, कोई प्रिपरेशन नहीं है, आसानी से उत्तर दे रहे। और जब ये अर्जुन और भगवान का संवाद हुआ कुछ, कोई 45 मिनट, कोई बोलता 1 घंटा, तो वो भगवद गीता के रूप में प्रसिद्ध हो गए। आज कितने सारे विद्वान भगवद गीता को अध्ययन करना चाहते हैं, कितने सारे विद्वानों ने उसके ऊपर टीका लिखी है, लेकिन फिर भी उनकी टीका से भगवद गीता का ज्ञान इतना परिपूर्ण प्रकट नहीं होता है ना। कितने सारे विद्वान अध्ययन करते रहते हैं और उनको भगवान हृदय से प्रेरणा देते रहते हैं और अलग अलग प्रकार की व्याख्या वहां से आते हैं। भगवान ने 40-45 मिनट जो ज्ञान प्रदान किया वो प्रसिद्ध हो गया, है ना। आज भगवान प्रसिद्ध हो गए कि भगवद गीता की वक्ता कौन है, तो कृष्ण है। और किस तरह का ज्ञान प्रकट किया है, अद्भुत ज्ञान प्रकट किया। और वेद पुराणों में भी भगवान से है ना जो ज्ञान आया वो भी अद्भुत है। तो मतलब सभी प्रकार के ज्ञान के स्रोत भगवान है ना। ऐसा कुछ ज्ञान नहीं है जो भगवान के पास नहीं है, सभी प्रकार का ज्ञान है। और ऐसे परम ज्ञानी भगवान है। और हमने भगवान की सुंदरता के बारे में श्रवण किया, फिर उनका बल और फिर उनका ज्ञान यश है ना। अभी यश के बारे में हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति का यश उस समय के लिए रहता है ना, और फिर समय के प्रभाव से वो यश नाश हो जाता है। अभी हजारों लाखों वर्ष पहले जब राजा महाराजा हो गए, उनका कहीं भी नाम नहीं है, चले गए, वो इतिहास में जमा हो गए। लेकिन भगवान का यश अभी भी है, आज भी भगवान का यश है। भगवान 5000 साल पहले पूर्व भी अवतरित हुए थे, भगवान रामचंद्र के रूप में लाखों साल पूर्व अवतरित हुए थे। और भगवान अवतरित होते रहते हैं लेकिन भगवान का यश अभी भी बना हुआ है ना। जिस तरह भगवद गीता प्रसिद्ध है उसका यश है, और उस तरह भगवान का भी यश, भगवान का यश कभी मिटता नहीं, हमेशा बना रहता है। इस संसार में लोगों का तो यश मिटते रहेगा लेकिन भगवान का यश कभी नहीं मिटता है। भगवान का गुणगान हमेशा होता रहता है ना। तो ये शास्त्र में भगवान का यश वर्णित है, और हजारों लाखों करोड़ों साल के लिए भगवान का यश का वर्णन होता रहता है। श्रीमद् भागवतम की रचना 5000 साल पर वही, आज भी श्रीमद् भागवतम का अध्ययन लोग कर रहे हैं, और आने वाले हजारों साल तक श्रीमद् भागवतम में और पुराणों में जो भगवान का यश है उसका बखान होता रहेगा। तो ये भगवान का एक गुण है कि उनका जो यश है, संपूर्ण यश भगवान के पास है। और सौंदर्य, यश और ऐश्वर्य, भगवान सभी ऐश्वर्य से युक्त है, परम धनवान व्यक्ति है भगवान। किसी भी धन की कमी नहीं है। भगवान बोलते हैं महाईश्वरम, मैं जितने भी लोक है सब लोगों का मैं परम नियंता हूँ, मैं सभी लोक मेरे वश में है। तो इस भौतिक जगत में भगवान जब अवतरित थे 5000 साल पूर्व, तो उन्होंने 16108 रानियों के साथ विवाह किया, और फिर उन सब रानियों को एक एक दिव्य महल दिया। और वो भी महल कोई सीमेंट कंक्रीट से बनाने आता, हीरे माणिक मोती जवाहर ऐसे बड़े बड़े अमूल्य रत्नों से वो महल बने हुए थे। और ऐसे एक दो महल नहीं बनाए भगवान ने 16108 महल बनाए, और हर एक रानी के लिए एक एक महल दिया, और अपने आप को भी 16108 विस्तारों में विस्तारित करके हर रानी के साथ वो रह रहे थे। तो ये है भगवान का धन। इस संसार में एक व्यक्ति अपनी पत्नी के लिए एक एक घर भी बना नहीं पाता, एक घर खरीद लेता है पूरे जीवन भर उसका वो पैसा देता रहता है। लेकिन भगवान ने अपनी शक्ति से, अपने धन से, अपने ऐश्वर्य से हर एक पत्नी के लिए एक सुंदर महल बनाया और उनको ऐश्वर्य से रखा। तो यह है भगवान का ऐश्वर्य, संपूर्ण ऐश्वर्य। इस संसार में कोई व्यक्ति धनी हो सकता है लेकिन उससे भी और बड़ा धनी होता है। और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं कि संसार में कि जो हजारों साल से लाखों साल से एक ही व्यक्ति सारे विश्व में धनी के रूप में प्रसिद्ध रहता है। हर कुछ साल में वो व्यक्ति बदलता रहता है। कुछ समय पहले बिल गेट्स संसार के सबसे धनी व्यक्ति थे, उसके बाद और दूसरा कोई बदलते रहता है। लेकिन भगवान की जो स्थिति है परम धनी के रूप में वो कभी नहीं बदलती। भगवान हमेशा सारे ऐश्वर्य के स्रोत रहेंगे और वो सबसे धनी व्यक्ति रहेंगे। तो इस तरह जब भी भगवान अवतरित होते हैं इस षड ऐश्वर्य को प्रदर्शित करते हैं, है ना। भगवान रामचंद्र के रूप में हो या कृष्ण के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, किसी भी रूप में हो, वो अपने ऐश्वर्य को प्रदर्शित करते रहते हैं। और इतना सब ऐश्वर्य होने के बाद भी भगवान के हृदय में जो वैराग्य है वो भी परम वैराग्य होता है ना। चैतन्य महाप्रभु के रूप में अपने उन्होंने वैराग्य का प्रदर्शन किया है ना। भगवान होते हुए भी उनकी सुंदर पत्नी होते हुए, संसार की सबसे सुंदर पत्नी विष्णु प्रिया थी उस समय की, लेकिन ऐसी सुंदर पत्नी का भी भगवान ने त्याग किया। इस संसार में लोग आसक्त रहते हैं अपनी सुंदर पत्नी से, अपने घर से, परिवार से, है ना, अपने ऐश्वर्य से, तो उनके मन में वैराग्य आ ही नहीं पाता है क्योंकि वो छोड़ नहीं पाते। लेकिन भगवान के पास सभी प्रकार के गुण सभी मात्रा में होते हुए भी उनके हृदय में परम वैराग्य है, और चैतन्य महापुरुष के रूप में उन्होंने वो वैराग्य प्रदर्शित किया। भगवान कृष्ण ने भी वो वैराग्य प्रदर्शित किया जब वो हजारों लाखों करोड़ों सुंदर स्त्रियों से घिरे हुए थे, आनंद का वातावरण था, वहाँ संगीत हो रहा था, नृत्य हो रहा था, लेकिन ऐसे अद्भुत आकर्षित वातावरण से भी भगवान, उन्होंने जैसे देखा कि इनके मन में थोड़ा गर्व आ गया है, तो भगवान वहाँ से अदृश्य हो गए। है ना, ऐसा कभी नहीं देखा जाता कि अगर जहाँ पर बहुत आनंद की स्थिति हो वहाँ से व्यक्ति चला जाए, बिल्कुल कभी नहीं जाता है, लेकिन भगवान वहाँ से भी चले गए। तो हम देखते हैं कि भगवान रामचंद्र ने भी अपनी सुंदर पत्नी का त्याग किया। भगवान जब भी आते हैं अपने सारे गुणों को प्रदर्शित करते हैं, और भगवान हमेशा दिव्य गुणों से युक्त व्यक्ति रहते हैं। इस संसार में कई लोग अपने आप को भगवान का अवतार घोषित कर देते हैं, लेकिन उनको अगर कहा जाए कि अगर आप भगवान हैं, तो भगवान कृष्ण ने 5000 साल पूर्व जब अपने आप को भगवान घोषित किया, अर्जुन ने भी जब उनको भगवान करके घोषित किया, तो फिर अर्जुन ने उनको कहा था कि आप मुझे आपका विराट रूप दिखाइए। अर्जुन को भगवान के विराट रूप से कोई लेना देना नहीं, ना वो कुछ आकर्षण है, लेकिन अर्जुन जानते थे कि भविष्य में कलयुग में ऐसे बहुत सारे ढोंगी आएंगे जो अपने आप को भगवान का अवतार कहेंगे, तो इसलिए उन्होंने एक यहाँ पर एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया अर्जुन ने कि वो अर्जुन जानते थे कि भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है, इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे विराट रूप दिखाइए, ताकि भविष्य में कोई अपने आप को अवतार कहेगा तो उसको भी विराट रूप दिखाना होगा, है ना। तो फिर भगवान ने अर्जुन को बहुत ही सुंदर विराट रूप दिखाया, दिव्य चक्षु भी उनको दिया विराट रूप दिखने के लिए, और फिर अर्जुन संतुष्ट हो गए। उन्होंने लगा ठीक है, अभी मुझे ये रूप इतना देखने की इच्छा नहीं है, मुझे तो भय लग रहा है आपका विराट रूप देख के, आप मुझे आपका द्विभुज श्याम सुंदर रूप ही दिखाइए। तो इस तरह हमें समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान का अवतार घोषित करता है तो सर्वप्रथम उसे विराट रूप दिखाना चाहिए, है ना, अपना सर्वव्यापी रूप दिखाना चाहिए, वो लोग देख नहीं पाते। कई बार अगर हम उनको पूछेंगे कि आपका विराट रूप दिखाइए, नहीं आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते, तो आप मुझे आँख दिखाइए, आँख प्रदान करिए, तो वो आँख भी दे नहीं सकते हैं उनका विराट रूप देखने के लिए। तो इस तरह से उनका पर्दाफाश हो जाता है, और वो अपने आप को भगवान घोषित तो करते हैं लेकिन भगवान की शक्ति नहीं दिखा सकते। इसी तरह जब भक्तिविनोद ठाकुर के समय में भी एक फाल्गु भगवान आए थे अपने आप को, वो तो एक छोटे से तुच्छ योगी थे, उन्होंने थोड़ी सी शक्ति अर्जित की थी, लेकिन वो लोगों पर अपना प्रभाव भी दिखा रहे थे, अनेक अनेक स्त्रियों के साथ, सुंदर स्त्रियों के साथ रास नृत्य कर रहे थे और उनका जीवन बर्बाद कर रहे थे। तो ये बात जब भक्तिविनोद ठाकुर के पास गई तो उन्होंने उनका पर्दाफाश कर दिया, जाके बोले तुम भगवान नहीं हो, तुम एक साधारण व्यक्ति हो, तुम एक साधारण योगी हो, थोड़ी सी तुमने शक्ति प्राप्त की है। वो बोला कहे मैं तो लोगों के इतने सारे दुखों को दूर कर रहा हूँ, उनके रोगों को ठीक कर रहा हूँ, मैं उनको अलग अलग शक्ति दे रहा हूँ, अलग अलग। बोले नहीं, फिर भी तुम भगवान नहीं हो, तुम एक साधारण इंसान हो। तो उन्होंने उनका पर्दाफाश किया, फिर उनको लगा कि वो फाल्गु भगवान को कि ये भक्तिविनोद ठाकुर मेरे रास्ते में बड़ा रोड़ा है, तो उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन भक्तिविनोद ठाकुर के ऊपर किया। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर जानते थे कि असली भगवान के अवतार का वर्णन श्रीमद् भागवतम में है, और उन्होंने अपने हाथ में श्रीमद् भागवतम को लिया और फिर उसी के आश्रम के बाहर जाकर वो श्रीमद् भागवतम का पठन करने लग गए, और उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन जब उनके ऊपर किया तो कुछ किसी भी प्रकार की शक्ति भक्तिविनोद ठाकुर के ऊपर कुछ काम नहीं की। अंत में क्या होगा, उसकी शक्ति उसके ऊपर ही लौट गई और वो अपनी ही तथाकथित तुच्छ शक्ति से वो मारा गया, है ना। तो इस संसार में जब ऐसे है तथाकथित जो अवतार आते रहते हैं, जो लोगों को भगवान के सही अर्थ पता नहीं है, भगवान की व्याख्या पता नहीं है, भगवान के गुण पता नहीं है, ऐसे अज्ञानी लोग इस तरह के ढोंगी भगवानों से हमेशा भ्रमित होते रहते हैं, ठगते रहते हैं। इसलिए व्यक्ति को शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। शास्त्र में गीता भागवत में भगवान की व्याख्या बताई है, भगवान के गुण बताए हैं, और इस तरह का ज्ञान अर्जित करेंगे तो हम कभी भी ठगे नहीं जाएंगे। इसलिए भगवान ने मनुष्यों के लिए ही बद्धजीवों के लिए शास्त्र दिया है। माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण। तो जो व्यक्ति माया मुग्ध होता है उसे कृष्ण का ज्ञान अपने आप में नहीं होता है। तो ऐसे ही बद्ध जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए स्वयं भगवान ने व्यासदेव के रूप में आकर वेद पुराण उपनिषद दिया है, ताकि बद्ध जीव किसी प्रकार के ढोंगी भगवान के द्वारा भ्रमित न हो जाए, है ना। तो इस तरह यहाँ पर ऋषभदेव जब अवतरित हुए हैं महाराज नाभिक के पुत्र के रूप में, तो उन्होंने भगवान के सारे लक्षण प्रकट किए हैं, और आगे भी हम देखेंगे किस तरह वो अपने गुणों का प्रदर्शन करते हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम भगवान के गुणों से और भगवान के शुद्ध भक्तों के गुणों से पूरी तरह वर्णित है, और श्रीमद् भागवतम हमें शिक्षा देती है कि हमें भगवान का शुद्ध भक्त बनना है, भगवान की सेवा करनी है। श्रीमद् भागवतम की शिक्षा से कभी भी ये प्राप्त नहीं होता कि हमें भगवान बनना है, है ना। भगवान बन के हमें कुछ, हम भगवान बन ही नहीं सकते हैं, लेकिन हम भगवान के भक्त बनने का प्रयास करेंगे तो हमें हमारा जो भगवान से संबंध है, हम भगवान के सेवक है, हमें भगवान की सेवा करनी है, और भगवान की सेवा करने से ही जीव को असली आनंद मिलने वाला, क्योंकि भगवान असली आनंद के स्रोत है। हम उनको जोड़ देंगे तो हमें असली आनंद प्राप्त होगा। जीव जो कि सच्चिदानंद है, शाश्वत ज्ञान में आनंद में है, तो उसके पास आनंद अर्जित करने की भावना रहती है। तो असली आनंद हमें भगवान के सेवक के रूप में ही प्राप्त होगा। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ दो शब्द बोलने का प्रयास किया है, तो कुछ त्रुटि होगी तो मुझे माफ कर देना। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। महाभागवत श्रील प्रभुपाद की जय।